प्रातः क्लास चल रहा था, 5/6/1965 शनिवार को आठवीं पेंटर मध्याह्न में बात चल रही थी। मीठे मीठे देखो ये बातें कौन कहती है। बेहद का बाप, मीठे मीठे भी कहते हैं, फिर सिकिंदे भी कहते हैं। पांच हजार वर्ष के बाद फिर से आकर के मिले हो। किससे मिले हो? है बेहद के बाप भी तो दो हैं। एक है आत्माओं का बाप और दूसरा है मनुष्य आत्मा मनुष्यों का बाप। तो दोनों बाप कहते हैं कि एक बाप से मिले हो 5000 वर्ष के बाद। फिर से माना फिर से मिलेंगे और फिर मिलते ही रहेंगे। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट माना फिर ऐसे ही फिरती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और संगम युग। और तो कोई दुनिया है ही नहीं। इस वैज्ञानिकों ने समझ लिया कि और ग्रहों उपग्रहों पर भी कोई दुनिया है, परंतु नहीं, 100 मंडल में सिर्फ पृथ्वी पर ही ये दुनिया है। पृथ्वी पर भी उत्तरी और ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पर कोई भी जीव जंतु नहीं है, क्योंकि जीवन के लिए सूर्य से निश्चित दूरी चाहिए और वो ग्रह उपग्रह तो कोई बहुत दूर है, कोई सूर्य के बहुत नजदीक है। वहां तो जीव जंतु होने का कोई सवाल ही नहीं। न वहां कोई दुनिया है। गॉड इज वन और उसकी क्रिएशन इज वन। मनुष्य तो कहते हैं आकाश, पाताल, स्टार सभी में दुनिया है। अब ऐसी तो कोई बात नहीं है। दुनिया एक ही है, गॉड इज वन, तो उनकी क्रिएशन भी वन। हाँ ये जरूर है कि अपनी सारी क्रिएशन को आकर के सुख शांति का वर्षा देते हैं। ये कल्प कल्प उनका काम है। और फिर जो दुख देते हैं वो रावण का राज्य है। जिस रावण को भारत में ही जलाते हैं और कोई जगह में थोड़े ही जलाते हैं। रावण कोई दूसरी जगह में नहीं है, क्योंकि रावण यहाँ ही है। सुख और दुख की आखानी यही है, इसी के ऊपर है। तो अभी सतयुग में जलाएंगे, वहाँ रावण निकालेंगे, वहाँ तो रावण का राज्य ही खत्म हो जाएगा। पीछे काहे का जलाना करना, पीछे तो राम राज्य हुआ ना, वहाँ रावण कहाँ से आएगा। जब तक रावण राज्य है, इतनी बुद्धि नहीं है कि बरोबर अभी रावण राज्य जरूर है, क्योंकि रावण को हम बरस बरस दलाते हैं। तो जो चीज यहाँ होती है वो वहाँ बरस बरस मनाते रहते हैं। होली एक दफा होती है, बम्बोर को आग लगती है, फिर बरस बरस जलाते रहेंगे। शिव जयंती भी बरस बरस जलम बनाते रहेंगे, कृष्ण जयंती बरस बरस मनाते रहेंगे। अब हर बरस कोई कृष्ण आता है क्या? हर बरस कोई रावण आता है क्या? यानी जो भी यहाँ संगम युग की बातें हैं वो फिर भक्ति मार्ग में बरस बरस मनाती रहती हैं। यहाँ संगम में तो एक बार होती है ना, क्या अरे शिव जयंती महाशिवरात्रि भी एक बार होती है या बार बार होती है? बरस बरस कब होती है? हैं? संगम युग में कब होती है? हैं? कोई कुछ बोलता है, संगम युग में बरस बरस महाशिवरात्रि होती है या एक बार होती है? कब? 76 में क्या हुआ? 1976 में क्या हुआ? बाप का प्रत्यक्षता वर्ष हुआ या नहीं हुआ? अरे है? अरे सारी दुनिया जानती है जब बच्चा पैदा होता है तो। गर्भ में रहता है तो कोई नहीं जानता। तो महाशिवरात्रि भी बार बार होती है कि एक बार होती है? कब है? कोई कहता 76 में, कोई कहता ब्रह्मा कुमारियां कहती है 36 में। अगर 18 में कहें तो 1976 में क्या मनाया है? मनुष्यों की बाप की प्रत्यक्षता हुई। एक बार होती है कि बार बार होती है? एक बार होती है। देखो होलिका बम्बोर को आग एक ही बार लगेगी, तो हर एक चीज को वो भक्त लोग बरस बरस मनाते रहते हैं। किसको फॉलो करते हैं? संगम युग की शूटिंग को ही फॉलो करते हैं। बरस बरस मनाते रहते हैं। तुम अभी रखड़ी बंधन करते हो कि किस जन्म के लिए पवित्र बनाते हैं, और वो हर बरस रखड़ी बंधन मनाती रहती है। शूटिंग यहाँ कैसे होती है? अरे संगम युग में वो भक्त ब्राह्मण हर वर्ष रखड़ी बंधन मनाते हैं या एक बार मनाते हैं? तो पांच चार वर्ष के भक्ति मार्ग में भी भक्त लोग वर्ष वर्ष मनाते रहते हैं, ये त्योहार मनाते ही रहते हैं। बहुत करके ये सात त्योहार आदि इस संगम समय का ही है, जो फिर भक्ति मार्ग में बरस बरस होता रहता है। अच्छा, ऐसे पांच चार वर्ष के बाद फिर से मिले हुए सिकंदे बच्चों प्रति माता पिता जिसको कहा जाता है सुख घनेरे, तो तुम जानते हो कि अभी हमको उस पारलौकिक माता पिता से घनेरे सुख मिल रहे हैं, जिसके लिए हम गाते रहते थे। अभी वो माता पिता मिल रहे हैं। फिर खलास आधा कल्प चुप, फिर तुम बरस बरस मनाते रहेंगे। शिव जयंती, तो ये माता पिता है ना, जिनसे हमको वर्षा मिलता है और मनुष्यों को मालूम ही नहीं पड़ता है कि शिव जयंती क्या चीज है, क्यों मनाते हैं, क्या हुआ था शिव जयंती पर, कुछ भी पता नहीं है। तो ये फिर से ऐसे ही होगा। अभी देखा ना, भक्ति मार्ग में जो कुछ भी हुआ सो फिर रिपीट होगा। सतयुग त्रेता में जो कुछ भी सुख की राजधानी थी सो फिर रिपीट कराई जाती है। ये सब बना हुआ है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रीऑर्डिनेंट इम्पेरिशेबल वर्ल्ड ड्रामा, यानी ड्रामा एक ही है, इसको ड्रामाज नहीं कहते हैं, वन ड्रामा। अभी इनका तुम बच्चों को मालूम है, दूसरे तो दुनिया में कोई भी नहीं जानते, वो तो ड्रामा ड्रामा पता नहीं क्या करते हैं। कोई ऐसे सत्संग में ये रिकॉर्ड नहीं बजाए जाते हैं। अच्छा, सिकिल के बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। आज का प्रातः क्लास है 6 जून 1965 रविवार। रिकॉर्ड चला है तू प्यार का सागर है। ये गीत किसने गाया? तू प्यार का सागर है। बच्चों ने बाप के लिए गाया कि तू जरूर है कि बाप को बच्चों के लिए प्यार रहता है। जब बाप को बच्चों के लिए प्यार रहता है तो माँ का भी प्यार होता है। बरोबर बच्चे कहते भी हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। जरूर प्यार करते हैं ना? अभी किसको याद प्यार किया? माँ मालिक को यानी क्रिएटर। क्रिएटर हुआ ना माता का, और बच्चों का रचयिता हुआ। तो बाप और माँ को बच्चे प्यार करते हैं, माँ और बाप बच्चों को प्यार करते हैं। ये भी बच्चे ऐसे ही कहते हैं कि ज्ञान का सागर है, परंतु है ज्ञान का सागर और है एक बूंद के प्यासे। अर्थात एक सेकंड के प्यार के भी प्यासे हैं। अरे ये बूंद क्या है? कहां सागर और कहां सागर की एक थोड़ी सी बूंद। एक बूंद से हम जीवन मुक्ति पाते हैं, यानी ये जो मृत्यु लोक है उस मृत्यु लोक से चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? मृत्यु लोक से पार लोक चले जाते हैं। तो मृत्यु लोक से चले जाते हैं अमर लोक, अपने स्वीट होम। तो देखो ये प्यार की एक बूंद है। कौन से समय का गायन है? संगम युग में भी कौन से समय का गायन है? अंतिम महामृत्यु के समय का गायन है। तुम बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले जावेंगी। एक सेकंड की दृष्टि जीवन मुक्ति दे देती है। अब ये तुम बच्चों को अच्छी तरह से समझाया गया है। अब ये तो बच्चे जानते हैं कि दुनिया में तो अनेक मतमतांतर है। कोई किसको पूजता है, कोई किसको पूजता है, कोई गुरु को पूजता है। अथाह गुरु है। अभी वो अथाह मतमतांतर क्या है? वो तो इस झाड़ की छोटी छोटी डालियां हैं। तुम झाड़ को देखेंगे, फाउंडेशन होता है, पीछे फाउंटेन निकलते हैं। यहाँ इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में तीन फाउंटेन निकलते हैं ना, इनको अंग्रेजी में फ्लावर वाज भी कहते हैं, गुलदस्ता। तो तीन है फाउंटेन और नीचे एक है फाउंडर। कौन सा धर्म? देवी देवता सनातन धर्म। तो देखो है ना बरोबर, ये फाउंडेशन बरोबर फाउंडेशन है आदि सनातन सतगी देवी देवता धर्म, ह्यूमिनिटी है। ये कौन सी वैरायटी? ये है आदि सनातन देवी देवताओं की वैरायटी। तो ये वैरायटी धर्म का झाड़ है। वो जो किस्म किस्म के झाड़ होते हैं, एक एक बीज का वो अपना अपना फल देते हैं, ऐसा ये भी है। और ये है बरोबर झाड़, परंतु इसको गाया ही जाता है वैरायटी, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के धर्मों का झाड़। देखो अथाह धर्म है, अनेक अनेक धारणाएं, तो अनेक अनेक मत भी है। ये अनेक अनेक मत आपस में मिल नहीं सकते हैं। देखो कहां भी जाओ, तुम राज्यसभा देखो, लोकसभा देखो, जो भी इन्होंने बनाई है, एक मत इनकी कभी नहीं मिलेगी, एक न मिले दूसरे से। कोई न कोई मत के ऊपर इनका झगड़ा चलता ही रहता है। इसलिए बाप आकर के साथ झगड़े मिटाई देते हैं, बोलते हैं मैं ये मतभेद का साथ झगड़ा मिटाई देता हूं। मतभेद को कहते हैं द्वैत मत, और एक मत को कहा जाता है अद्वैत मत। देवी देवताओं की होती है अद्वैत मत, और असुरों की होती है द्वैत मत। उनको कहा ही जाता है दैत्य, द्वैत मत की औलाद। अद्वैत को फिराएंगे तो देवता बन जाएंगे, और द्वैत को फिराएंगे तो दैत्य बन जाएंगे। एक को हटाएंगे तो क्या बन जाएंगे? द्वैत बन जाएंगे, दैत्य बन जाएंगे। तो अनेक प्रकार की मत को आसुरी मत कहा जाता है। ये मत मतांतर इतना कौन फैलाते हैं? है ये मत मतांतर फैलाने वाले रावण संप्रदाय है। शूटिंग कहाँ होती है? कब से? मम्मा के जाने के बाद, उससे पहले नहीं, यज्ञ के आदि से ही। स्थापना के साथ साथ विनाश ज्वाला भी प्रकट हुई। तो ये झगड़ा हुआ ना, द्वैत के बगैर झगड़ा होता है क्या? तो यज्ञ के आदि में किसकी कहेंगे एक मत और किसकी कहेंगे द्वैत मत? है प्रजापिता ब्रह्मा जिससे दादा लेखराज को अपने साक्षात्कारों का रहस्य मिल गया, रहस्य तो मिला परंतु जिससे रहस्य मिला उसको पहचाना नहीं। क्यों नहीं पहचाना है? नहीं, अहंकार था। ये मेरी दुकान का दास है, मैनेजर को भी दास कहा जाता है, नौकर कहा जाता है। तो ये अहंकार ने पहचान नहीं होने दी। द्वैत मत फूट गई। अब बताओ ये जितने भी दुनिया में गुरु हैं उन गुरुओं में वो पहला गुरु कौन है? जो पहले पहले मत मतांतर फैला देता है। ये इतना मत कौन फैलाते हैं? इसको कहेंगे रावण राज्य। इसलिए रावण के सिर पर गधे का सिर दिखाते हैं। सचयुग में तो होती है एक अद्वैत मत। कोई झगड़े की, कोई खिटपिट की, कोई भी बात नहीं। ये बात तो बच्चे अभी अच्छी तरह से समझ गए हैं। अभी बताओ बाप कौन है और वो बाप कहाँ का मालिक है? हैं? जो विश्व का मालिक है इस बात को मनुष्य नहीं समझते हैं। वो समझते हैं कि ये जो भी त्रिलोकी है तीन लोक का मालिक है। अब त्रिलोक माने क्या? त्रिलोक माने मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। इसको त्रिलोकी कहा जाता है। तीन लोक भाई त्रिलोकी नाथ है ऐसे कह देते हैं। बाप कहते हैं ये सभी झूठ है, हम त्रिलोकी नाथ हैं ही नहीं। कौन सा बाप कहते हैं? कहते हैं हम सिर्फ मूल वतन की नाथ हैं। ब्रह्मांड के मालिक हैं, बाकी सूक्ष्म वतन में तो ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं, हम थोड़े ही बाहर रहते हैं। हम कह के बहुवचन क्यों कर दिया है? हम माना कम से कम कितने, कौन कौन? आत्माओं का बाप और मनुष्यों का बाप। मनुष्यों का बाप सूक्ष्म वतनवासी नहीं होता, हमारा तो वहां निवास स्थान है। कहाँ? मूल वतन में। अच्छा, ये जो मनुष्य लोक है इसमें हमारा निवास स्थान थोड़े ही है, ये मेरा लोक थोड़े ही है। किसका है? बच्चों का है, रावण का नहीं है। शिव बाप के बच्चे तो आत्मा है या देह अभिमानी है? और रावण? अरे वाह, रावण तो देह अभिमानी होता है। तो ये तुम्हारा लोक है और वो ब्रह्मा विष्णु शंकर का लोक है। हमारा तो मूल वतन लोक है, तो हम कहाँ हैं त्रिलोकीनाथ? हम हैं नहीं, तुम भी कोई अपन को त्रिलोकीनाथ नहीं कहेंगे। क्यों? सूक्ष्म वतन के नाथ तुम लोग कहाँ हो? सूक्ष्म वतन के नाथ तो ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। तुम लोग कहाँ हो? तुम लोग ये जो स्थूल वतन है उसके नंबरवार मालिक हो। मैं ब्रह्मांड का मालिक हूँ। जो भी आत्मा रूपी अंडे हैं उनका और सूक्ष्म वतन का ब्रह्मा विष्णु शंकर मालिक। तो कौन कहते हैं परमपिता परमात्मा त्रिलोकीनाथ है या तुम त्रिलोकीनाथ हो? रावण त्रिलोकीनाथ कहता है। हर एक अपनी अपनी जगह का नाथ है, समझा ना? तो ये सभी गुई ये बातें हैं जो बाप बैठ करके बच्चों को समझाते हैं। विचार करो, जज करो कि तुम कहाँ हो। अगर तुम सूक्ष्म वतन के मालिक होंगे तो तुम सूक्ष्म वतन में रहते होंगे, परंतु नहीं, सूक्ष्म वतन में तो ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं। तुम वहां के रहवासी थोड़े ही हो, तुम 84 पुनर्जन्म लेने वाले हो। तो हरेक की एक्टिविटी या पार्ट अलग अलग है। छ 1965 की वाणी का दूसरा पेज। तुम 84 जन्म लेते हो, सूक्ष्म वतन में जो रहते हैं तुम उनके लिए नहीं कहेंगे कि उनके 84 जन्म, जबकि 84 जन्म तो यहाँ मिलते हैं। तुम हो मूल वतन में, क्योंकि अभी सभी तीनों लोगों का जान गए हो। तुमको कहा जाता है त्रिकालदर्शी बने, तो बरोबर मूल वतन में बाप भी रहते हैं, तुम बच्चे भी रहते हो। हाँ, ऐसे कह सकते हो कि बरोबर हम वहाँ मूल वतन में बाबा के घर में तो रहने वाले हैं ही, क्योंकि बाबा भी इनकॉर्पोरियल, हम भी इनकॉर्पोरियल, अर्थात बाबा भी निराकार हम भी निराकार। यानी जबकि हम वहाँ रहते हैं तो कोई सूक्ष्म या स्थूल आकार नहीं है, कहाँ बस वहाँ हम आत्माएं रहती हैं। सो भी देखो हमारा आकार कितना है कोई भी नहीं जानती है। बाप आकर समझाते हैं बच्चे आत्मा का आकार क्या है, जिसको निराकार कहा जाता है। देखो ये बिंदी है, अभी इसे कोई जानते हैं क्या? भले जाते हैं कहते हैं कि भ्रकुटी के बीच में चमकता है जब सितारा, और बरोबर ये साक्षात्कार तो बहुतों के होते हैं, ऐसे भी नहीं कि नहीं होते हैं। समझ में तो कोई किसी को नहीं आता, जब समझ में आता है कि बरोबर इस शरीर में आत्मा का निवास स्थान है, तभी हम बोल सकते हैं। यानी आत्मा कहती है हाँ मेरा निवास स्थान इस शरीर में है, तब तो मैं इन आर्गन से बोल सकती हूँ। पीछे जब हम अलग हो जाती हूँ तो बोल भी नहीं सकते। आत्मा निकल जाए तो शरीर बोलेगा क्या? नहीं, शरीर बिल्कुल कोई काम का नहीं, जलाया जाता है। आत्मा को तो कोई जला ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो अविनाशी है, उनमें अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। क्योंकि इस ड्रामा को ही जबकि कहा जाता है इम्पेरिशेबल ड्रामा, तो जरूर इम्पेरिशेबल आत्मा, क्योंकि सब बच्चों का आत्मा में ही पार्ट है। और बच्चे भी समझ गए हैं कि ऊंचे से ऊंचा भगवान, जिसको अनेक प्रकार के नाम देते हैं, मालिक भी कह देते हैं, इसको है किसको मालिक कह देते हैं? शिव बाबा को। शिव बाबा तो कहा ही जाता है, शिव माने ज्योतिबिंदु, बाबा माने साकार, तो दोनों विश्व के मालिक बनते हैं क्या? हैं? दोनों तो नहीं बनते, विश्व के मालिक तो तुम बच्चे बनते हो। तो ये जो अनेक प्रकार के नाम देते हैं वो किसके लिए देते हैं? जब मालिक ठहरा तो जरूर हम फिर बच्चे ठहरे, वो हमारा मालिक। माँ मालिक, देखो मुसलमान लोग कहते हैं ना माँ मालिक। अच्छा, बहुत हिंदू लोग भी ऐसे कह देते हैं, खास करके ये जो फरुखाबाद की तरफ वाले हैं, वो कहते हैं मालिक भाई मेरा मालिक। अब मालिक किसको कहा जाए? बाप ही कहेंगे उसको। जो मालिक है फादर ही कहेंगे ना। किसका फादर है? आत्मा का फालिक फादर, मनुष्यों का फादर। मनुष्यों में भी अनेक धर्म वाले हैं, सब तो नहीं कहेंगे, कौन कहेंगे? मालिक ठहरा तो फादर ही ठहरा। तो जब भी फादर का मालिक का ऑक्यूपेशन चाहिए, सिर्फ मालिक कह देना, उससे तो कुछ भी फायदा नहीं है। अरे मालिक 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 क्या कहते हो? इस मालिक से क्या मिलने वाला है? भला मालिक को क्यों याद करती हैं? मालिक से कुछ मिलना चाहिए ना। यानी बाप है तो उससे मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? जरूर बाप से इनहेरिटेंस वारसा मिलना चाहिए, ठीक है ना? इनहेरिटेंस भी देंगे तो कहाँ का देंगे? वो भी तो मालूम होना चाहिए भाई। यहाँ मालिक कहाँ रहते हैं भाई? वो मालिक निर्वाण धाम में रहते हैं। तो जरूर हम भी तो निर्वाण धाम के वासी होंगे, बल नंबर वार होंगे, वो भी निराकार, तो हम आत्माएं भी निराकार। अच्छा तो फिर हम उस मालिक से क्या चाहते हैं? मालिक को क्यों याद करते हैं? मालिक से मिलने के लिए फिर बात होती है, कैसे मिले, क्यों मिले, फिर हमको क्या होगा? क्या मालिक के पास जाकर बैठ जाना है? नहीं, फिर भी तो हमको यहाँ आना है जरूर। ऐसे तो नहीं कि आना नहीं है, ऐसा कोई भी मनुष्य है ही नहीं जिसको यहाँ आना ना हो। आना ही है तो जानते हो कि बरोबर कोई पहले आने वाले हैं, कोई पीछे आने वाले हैं। जो पहले आने वाले हैं वो पीछे में रहते हैं, और पीछे वाले फिर पहले में रहते हैं। तो पहले में कौन रहते हैं ये भी बच्चों को मालूम होना चाहिए भाई। पहले में सतयुग में तो स्वर्ग होता है, अभी तो ये नरक है। तो पहले में भला कौन आते हैं? देखो कितनी गूढ़ बातें हैं जो बाप बैठ करके समझाते हैं। कुछ समझते हो? ये तो जैसे ही जो कुछ आया सो अपन को बोल दिया, अरे ये तो बाप बैठकर से समझाते हैं, अभी फिर बच्चों को ख्याल होता है, क्योंकि झाड़ तो अच्छी तरह से समझाई दिया, नहीं तो झाड़ वगैरह की कोई बात नहीं। कहते हैं कल्प वृक्ष है, पर वो कल्प वृक्ष में भी पहले पहले कौन पत्ते आते हैं और किस धर्म के आते हैं? क्योंकि बाप ने समझाया ये वैरायटी धर्म का झाड़ है और भिन्न भिन्न धर्म है। देखो ये है ना भिन्न भिन्न, पहले डीटी धर्म, पीछे इस्लामी धर्म, पीछे बौद्ध धर्म, पीछे क्रिश्चियन। अच्छा क्रिश्चियन धर्म क्या सतयुग में आवेगा? नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये अविनाशी ड्रामा है जो फिरता गिरता रहता है। 6/6/1965 की वाणी का तीसरा पेज। इस झाड़ के लिए भी कहा जाता है कि बरोबर ये पुराना झाड़ विनाश होता है, परंतु विनाश होने के पहले पहले जरूर स्थापना चाहिए है? कहाँ की बात हुँ? कौन सा झाड़ बुद्धि में आता है? 5,000 वर्ष का झाड़ बुद्धि में आता है, या संगम युग में जो झाड़ की शूटिंग होती है वो बुद्धि में आता है? विनाश होने से पहले जरूर स्थापना चाहिए। शास्त्रों में कोई ने लिख दिया है प्रलय भी होती है, प्रमाण प्रकाश रूपेण लय माने लीन, कुछ भी नहीं रहता है, एक भी नहीं रहता है। अच्छा पीछे क्या होता है दिखाते हैं, वो सागर में एक पीपल के पत्ते पर एक बालक आता है। अरे भला वो बालक कौन है? कौन है? हैं? कौन कौन सी आत्मा है? ब्रह्म वाली आत्मा है, वो कृष्ण वाली आत्मा आती है पीपल के पत्ते पर संगम युग में है। उस बालक को क्या कहेंगे? बालक कहेंगे, या बालक कहेंगे हैं? क्या कहेंगे? अरे बच्चा बुद्धि कहेंगे या सालिम बुद्धि कहेंगे? तो बालक आकर के क्या करते हैं? ये तो बेचारों को कुछ मालूम नहीं है, फिर कह देते हैं बालक वो तो श्री कृष्ण है। अरे भाई श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर सागर में कैसे कैसे आएंगे हैं? पीपल का पत्ता इतनी छोटी न भैया, हल्का फुल्का पत्ता, उस पर बालक कैसे आवेगा? कभी ऐसे बच्चा कोई पीपल के पत्ते पर सागर में आता है? हाँ, ये भी सुनते हैं तो सत्य कह देते हैं, सत्य वचन महाराज, वो ख्याल ही नहीं करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो कैसा होता है, हैं? इसका वास्तविक अर्थ क्या है? शास्त्रों ने जो ये दिखाया है उसका सार क्या है? वो तो निस्सार बातें बोल देते हैं जो हो ही नहीं सकता। सार है, ये संसार रूपी सागर है, विषय सागर है, उस विषय सागर में पत्ता माने कोई चैतन्य पत्ता है, कोई आत्मा है जो पीपल के पत्ते की तरह हिल डुलने वाली है। वृक्षों में ऐसा कौन सा पत्ता होता है जो थोड़ा भी हवा का झोंका आए तो जोर से हिलता है? तो कोई चैतन्य पीपल का पत्ता है, थोड़ा सा माया का झोंका आता है तो जोर से हिल जाता है। ऐसे पत्ते का आधार कौन लेता है, हैं? कृष्ण की आत्मा लेती है, सतयुग की बात नहीं है, ये संगम की बात है। इतना बाप का पार्ट है जो बैठ करके समझाते हैं, वो भी आकर के कहते हैं कि बच्चे मैं आकर के साधारण तन में प्रवेश कर और तुम बच्चों को नाली सुनाता हूँ। जैसे दूसरे बच्चे भी तो आकर के छोटे बच्चों के भी कहते हैं कि ब्रकुटी के बीच में है, तो जरूर ब्रकुटी के बीच में आकर बैठता होगा। वो छोटे बच्चों में बैठ सकते हैं, तो क्या मैं बड़े बच्चे में नहीं बैठ सकता? और मैं आकर कहता हूँ कि मैं आऊं भला, नहीं तो तुम राय निकालो मैं कैसे आऊं, है? छोटे बच्चों में आऊं या समझदार में आऊं, राय निकालो, मुझे तो रथ चाहिए। वो दो चार घोड़े वाली गाड़ी, वो रथ की तो बात नहीं है। देखो ये रथ और उसमें भी रथी आत्मा, वो तो खुद अपने रथ में है। फिर बाप कहते हैं मैं इसके रथ में ही आकर के प्रवेश करूं। नहीं तो मैं रथ कहां से लाऊं? तुम लोग विचार करो, जज करो कि मैं किस में आऊं, है? पीपल के पत्ते जैसी हिलती डुलती आत्मा में आऊं या जो पत्ता बहुत भारी डंडी वाला होता है, क्या स्मृति रूपी डंडी बहुत स्थिरियम उसमें आऊं, और फिर मुझे आना भी उसमें ही है जिसने पूरे 84 जन्म भोगे, क्या जिसके 50 वर्ष कम हो जाएं सस्य रूपी चक्र में से उसमें आऊंगा क्या, जिसको फिर पहले नया बनना है पूरे 5000 वर्ष पुराना, तो जरूर मुझे पहले इनमें बैठना पड़े जो पहले से सुने, तो पहले पहले किसने सुना है, हम बीज प्रदत्त पिता, मैं ज्ञान का बीज बोने वाला पिता हूँ, तो किसमें आऊं, ये तुम जानते हो कि पहले पहले इनके कान सुनते होंगे, किनके, ब्रह्मा के कान सुनते, जब बाप आया शिव बाप तो पहले किसने सुना, प्रजापिता ने सुना या ब्रह्मा ने सुना, मैं तुम बच्चों को सुनाता हूँ, ये ब्रह्मा बीच में सुन लेता है, तो देखो सुनने में भल देरी नहीं लगती है, सेकंड भी नहीं लगता है, परंतु बाबा इनमें बैठ करके सुनाते हैं, तो बहुत नजदीक हुआ ना, तो ये पहले सुनते हैं, क्यों इनको पहले आना है, और पहले आने वाले को पुरुषार्थ भी ऐसा ही करना है, कैसा, जो पहले आ जाएं, कहां कहां पहले आ जाएं, और कहां से आ जाएं, परमधाम से पहले आ जाएं, सत्य रूपी रंगमंच पर पहले आ जाएं, पहले बाप आएगा या कृष्ण बच्चा आएगा, पहले तो बाप आएगा, और बाप अकेला आएगा कि और भी उसके साथ होंगे, अकेला तो नहीं आएगा ना, पीछे प्लस में होता है, रेस होती है ना, तो पीछे जो आ जाता है 1 सेकंड के अंतर में वो प्लस में आ जाता है, उसमें प्लस होती है, क्योंकि इस दौड़ में बहुत प्रकार का अनुभव होना चाहिए, जो दृष्टांत देकर के समझा दें, तभी तो कहा गया है ना, किसने तो 12 गुरु किए, बहुत गुरु किए, बहुत शास्त्र पढ़े हैं, तो बात कहते हैं बच्चे ये सभी भूल जाओ। तुमने जो कुछ पढ़ा है उनसे कोई भी फायदा नहीं हुआ। अच्छा, अभी ये शास्त्र पढ़ते पढ़ते तुम्हारा ये हाल हो गया। इनको कहते हैं ना, देखो तुम समझते हो कि किसको कहते हैं, ये वो ही सोल है जो पहले थी, श्री नारायण की थी, पूज्य था, फिर जरूर पुनर्जन्म लेकर के पुजारी बनेंगे। तो आप ही पूज्य, आप ही पुजारी किसको कहें? जरूर जो पहले हुआ है उनको ही कहेंगे। देवताएं हुए हैं जरूर, फिर पूज्य से पुजारी बने, बाप को तो नहीं कहेंगे। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, मनुष्य तो ऐसे ही कहते हैं, आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। बुद्धि एकदम चली जाती है फिर निराकार की ओर। ये तो इनको मालूम ही नहीं है, बाप बैठ करके बच्चों को अच्छी तरह से समझाते हैं कि एक तो झाड़ को बुद्धि में रखो, अच्छा। ओम शांति।